लग जाए और उस प्यास की दशा में एजिटेड वाटर यदि आपको मिले पीने के लिए जो अपने स्वरूप में हो, कोई गंदगी नहीं, स्वाद बदला ना हो, तो उस समय उस जल को पी करके जो स्वाद का अनुभव होता है और कोई वस्तु खा करके नहीं हो सकता है। ये प्यास लगी है और आपको कहा जाए दूध पियो तो वो उस स्वाद का अनुभव नहीं होगा। ये किसी को प्यास लगी है और कोई कहे कि पेट्रोल पियो तो अनुभव नहीं हो सकता है। चाहे कोई भोजन खा लो, ये कर लो, करो, पहले अभी ना तो नहीं, पहले पानी दो, पहले पानी दो, पानी में तृप्त करने की शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं रस अहम अप्सु, अप माने जल होता है, जलों में जो रस है, टेस्ट है, वो मैं हूं। और सभी लोग जल पीते हैं तो जल पी करके जो तृप्ति होती है, अथवा दूध पी करके या शराब पी करके जो तृप्ति होती है तो कृष्ण है। ऐसा अनुभव करना चाहिए कृष्ण दे रहे हैं तब हम शराब पी रहे हैं, तो ये भी नहीं मिल सकता है, वास्तव में भगवान दिए हैं हमको। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि शराब पीना चाहिए, लेकिन जो शराब पी रहे हैं उनको भी ये अनुभव करना चाहिए, मुंह से बोतल लगाते हैं, ये भगवान कृष्ण की दया है, वही दिए, नहीं तो बना कौन सकता है, कौन बनाएगा वो जल या फल या जो कुछ भी। तो हम लोग भी कुछ खाते हैं पीते हैं तो गिलास मुंह से लगाते ही कृष्ण की याद आनी चाहिए, इसको कृष्ण भाव करते हैं। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आप इतनी दुर्लभ महत्वपूर्ण वस्तु दिया। प्राकृत जगत में भी जल में इतना स्वाद होता है, अप्राकृत जगत का स्वाद जल कैसा होगा, वहां की वायु कैसी होगी, इसका थोड़ा हिंट दे रहा है। तो पूरा वन सुगंधित है वायु से जागते हैं, तो ऐसे वन में भगवान अक्षता श्री कृष्ण सब गो गोपाल कहनाविशन प्रवेश किए। श्री कृष्ण के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान के भिन्न भिन्न नामों का बहुत महत्व है, क्यों अच्युत नाम दिया गया, क्यों कृष्ण नाम नहीं दिया गया। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने सौंदर्य से, करुणा से, लीला वैभव से, धन से किसी तरह से कभी च्युत नहीं होते हैं, या भक्तों के संग से च्युत नहीं होते, हमेशा गौओं के साथ, गोपों के साथ जो रहते हैं, बांसुरी कभी नहीं छोड़ते हैं, उनको अच्युत कहते हैं। हम लोग च्युत हैं, च्युत हैं हम लोग। च्युत का अर्थ होता है कि आज जवान है कल बूढ़े हो जाएंगे, आज धनी है कल धन चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा, स्मृति शक्ति चली जाती है, दया आदि भी चली जाती है, दूसरा जन्म होता है, ये होता है, होता है, तो चूत है, एक 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 समान नहीं रह सकते है ना, एक समान नहीं रह सकते। ठीक इस अच्युत के विरोधी चुतिया शब्द है, भगवान अच्युत है, हम सब च्युत हैं, आज जो बोलते हैं कल बदल जाते हैं, लेकिन भगवान जो बोले हैं वो बदलते नहीं। नमो भक्त प्रदर्शति, जो भी प्रतिज्ञा किए हैं तो उसका पालन करते हैं, मनुष्य कर नहीं पाते। मनुष्य को या अन्य जीवों को च्युत कहा गया है, भगवान कृष्ण अच्युत है, सदा एक रस रहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि जो महात्मा होते हैं उनके जो वचन मुंह से निकलते हैं वे हाथी के दांत के समान होते हैं, निकले हैं तो निकलते हैं, हाथी का दांत निकला है तो निकला रहता है, लेकिन जो नीच व्यक्ति होता है, नीच पुरुष होता है, उसका वचन कछुआ के सिर जैसा होता है, कछुआ के मस्तक जैसा, कभी भीतर जाता है कभी बाहर जाता है, भीतर बाहर भीतर कई बार, हाँ ये देखे ये एक बार कह देता हाँ ठीक है, और दूसरी बार कुछ न कुछ असंभावना देखते हैं। कछुआ का सिर देखे हैं, वो कहते कछुआ अपने मस्तक पूरा शरीर में समा लेता है, बाहर पता नहीं चलता है कि उसको उसको मुख है लंबा और कभी कभी प्रकट करता है अपने मुख को। तो दुर्जनों का जो वचन होता है, उनका जो वादा होता है, वो कछुआ के मुख के समान होता है। कभी निकल गया ऐसे 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 और दूसरी बार लेकिन महात्माओं का उच्च मनुष्यों का जो वचन होता है, निकल गया तो निकल गया, कह दिया कह दिया। बलि महाराज शुक्राचार्य से यही पाते हैं कि जब मैं अपने मुख से कह दिया इसको देने के लिए, तो कैसे कह सकता हूँ तो नहीं दूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा तब तुम्हारे पास अब धन नहीं रहेगा, सब कुछ ले लेंगे। बलि महाराज कहते हैं सब कुछ ले लेंगे, ठीक है, कीर्ति तो नहीं लेंगे ना सब कुछ ले ले, कुछ भी सब कुछ ले ले, या मुझको ले ले, मुझे नरक में गिरना पड़े कहीं गिरना पड़े, मैं बोला था नहीं दूंगा। जब एक बार बोल दिया तो मैं वचन की रक्षा करूंगा, शरीर की या धन की नहीं। और उन्होंने दे दिया, गुरु के विरोध करने के बाद भी भगवान को सारा विश्व दे दिया। तो इस तरह से भगवान ऐसे हैं कि वे अपने वचन का हमेशा निर्वाह करते हैं और किसी भी विषय में भी अच्छी होता है, बल में, धन में, ज्ञान में, सब एक रस रहते हैं। तो यहाँ खास करके सौंदर्य और लीला के लिए कहा गया, तो हमेशा सुखी रहते हैं, दुखी कभी नहीं रहते हैं भगवान। भगवान के मन में कभी इच्छा भी हो कि मैं दुखी हो जाऊं तो हो नहीं सकते। भगवान के मन में इच्छा हो कि मैं मर जाऊं कभी तो मर ही नहीं सकते। जैसे हम लोग शरीर छोड़ देते हैं, शरीर हमें छोड़ देता है, तो भगवान में शरीर शरीर का भेद नहीं है, मरेंगे कैसे वो तो नख से सिख तक केवल जीवन तत्व है, चेतन वस्तु है। भगवान के भाग में मरना लिखाई नहीं गया, मर नहीं सकते। जैसे भगवान सूर्य कभी रात का दर्शन नहीं कर सकते, इतना बड़ा व्यक्ति है लेकिन रात से भेद नहीं होती है तो जहाँ जाएंगे पहले ही करोड़ों कोष में प्रकाश हो गए। तो भगवान हमेशा आनंदमय है, कभी दुखी हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, जो इंदौर में पूछा था, तो पूछा महाराज भगवान ने सबके पिता हैं और परम दयालु हैं और सर्वसमर्थ भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, तो इस जगत के जब पिता हैं तो जगत में इतनी जीव दुखी नरक भोग रहे हैं, क्लेश भोग रहे हैं, फिर भी भगवान क्यों आनंद में है, उनको क्यों नहीं चिंता होती है, वो क्यों नहीं रोते हैं यहाँ तो देखा जाता है पिता है अगर उसके बच्चे दुखी होते हैं तो वो दुखी हो जाता है, लेकिन भगवान क्यों दुखी नहीं है। आप कहते हैं भगवान आनंद घन है और वो बनाए हैं दुनिया को, सारा दुख जानते हैं, जीव कितना दुखी है वो सबको मालूम है उनको, और मिटाने की शक्ति भी है। ये सब जान करके ही भगवान सुखी रहते हैं और उनके पुत्र सब दुखी हैं, कैसा भगवान है, कैसा बाप है तो मैं कहा कुछ भी हो भगवान का स्वरूप है आनंदित रहना, आनंद में रहेगे। अब दुनिया चाहे रोवे गावे कुछ भी, भगवान स्वरूप कैसे बदल देंगे, जो हैं वो हैं। ये भगवान का वास्तव में स्वरूप है। और दूसरी बात ये है कि यदि जीवों का दुख देखकर भगवान खुद ही दुखी हो जाए तो उनकी शरण कौन लेगा शरण तो उसकी लेनी चाहिए जो कभी दुखी नहीं है, जिसके पास अनंत वैभव है, आनंद में है कि नहीं। और आप किसी से कुछ मांगने जाइए दुखी हैं और उसके घर पहुंचे तो वो खुद ही रो रहा है, अब उसकी शरण क्या लेंगे बताइए क्या शरण लिया जाए, वो खुद ही जब दुख में है तो भगवान कभी दुख में नहीं है। और बैठे रहते हैं कोई हमारे शरण में आ रहे, तैयार है जो यथा माम प्रपद देव देवता स्थाई हो जाएंगे, भगवान का स्वरूप। तो श्री कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं और जो भी उनकी शरण में आता है वो आनंदमय हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। मैं प्रश्न किया उस व्यक्ति से, क्या तुम क्या सोचते हो कि भगवान भी दुख में पड़े रहे, रोते रहे, और जब वो भी दुख में पड़ जाएंगे तब जीव किसकी शरण लेगा, कहाँ जाएगा है न। कम से कम जिसका भजन करने चले हैं वो तो आनंदमय होना चाहिए, हम भले दुखी भगवान आनंदमय है अक्षेप है। तो ऐसे अक्षेप गो गोपाल कह स गयों के साथ और गोपालों के साथ वन में प्रवेश किए, तो शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश का वर्णन किया गया था, वर्षा काल में प्रवेश का वर्णन किया गया, शरद काल में प्रवेश का वर्णन किया जा रहा है, भगवान प्रवेश कर रहे हैं। पुनः अब लीला का वर्णन कर रहे हैं। कुसुमित वनराजी सुस्मृंग कुल घुष्ट सरहा सरी महेद्र मधुपति रव गाय चार गंगा सह पशुपाल बलश्चुकुज बेहम सह पशुपाल बल सहकार होता है साथ, पशुपालों के साथ और बल के साथ, बलराम के साथ श्री कृष्ण वन में बांसुरी वादन कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। सह पशुपाल बल गोपाल या पशुपाल दोनों का एक ही अर्थ है। पशुपाल मतलब गौ का पालन करने वाले गोप और बल बलराम, इन सबके साथ मधुपति ही श्री कृष्ण गाह चारे गौओं को चराते हुए वन में प्रवेश करके वेणु चिकूजा बांसुरी बजाना प्रारंभ किए, वेणु बजाना प्रारंभ किए, वेणु वादन की लीला को सबसे पहले कह रहे हैं वन में प्रवेश कर, वन का वर्णन कर रहे हैं। कुसुमित वनराजी सुष्म भृंग द्विजकुल घुष्ट सरह सरिन महिद्र कुसुमित वनराज से वृंदावन के वनराज मतलब वृक्षों की जो श्रेणियां हैं, वृक्ष जो है जो कुसुमित है सबने फूल भरा हुआ है, फूल और फल से लगे हुए हैं। कुसुमित वनराज और उन पुष्पों पर वृक्ष में जो पुष्प लगे हैं उन पुष्पों पर भृंग बैठ भौंरे, तो वृक्ष जो है भौंरों से पक्षियों से कुल व्याप्त, वृंदावन में जहां भी भगवान जा रहे हैं जहां भी जिसो तो पुष्प खिले हैं और उन पुष्पों पर भौंरे मरगा रहे हैं, पक्षी बैठे हुए हैं भौंरे और पक्षी गा रहे हैं और उनके गाने से घुष्ट निनादित है सरह सरित महिद्र, सरोवरों में वो आवाज टकरा रही है, नदियों में और पर्वतों में भौरों की और पक्षियों की आवाज भरी हुई उस वन में, तो इस तरह पक्षियों के शब्द टकराते हैं पर्वतों से और नदी के जल के ऊपर भी टकराते हैं, उनका इस तरह से वो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिध्वनित होते हैं, तो इस कारण से पर्वतों के कारण सरोवरों के कारण और नदियों के कारण वो पक्षी और भौरों के जो शब्द हैं वो टकरा करके सब जगह व्याप्त है, एक तो सब जगह पक्षी है सब जगह भौरे हैं और उस पर भी नदी सरोवर और पर्वत से टकराते हैं सब, तो और गुंजायमान हो रहा है सर्वत्र शब्द है, सब पक्षियों का शब्द है। इधर तो बड़े बड़े शहरों में केवल गाड़ियों के चलने का ट्रक और कार के चक्का का शब्द है और इससे बचने के लिए ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है हाईवे पर, एक खराब शब्द है ना, सब लोग ऊंची दीवार बनवाए हैं, सुनना नहीं चाहते, सुनने लायक है भी नहीं, लेकिन वृंदावन में तो हमेशा निनाद होता रहता है पक्षियों का, अनेक प्रकार के पक्षी हैं कोयल मयूर आदि और भौंरे। ऐसे वन में मधुपति ही गाह चारे और गाह चिकुज गुण तो गौ चराते हुए घूम रहे हैं, तो अपने आप समझ लेने के गाह चारे शब्द से तो गौ के चरने के लिए पर्याप्त घास है, तृण वे आनंद से चल रहे हैं चल रहे हैं और श्री कृष्ण ऐसे वन में इधर से उधर बच्चों के साथ गोपों के साथ घूम रहे हैं। अवगाह्य अवगाहन का अर्थ होता है खूब घूमना, जैसे जल में अवगाहन किया जाता है तो वैसे श्री कृष्ण वन में अवगाहन किए, इधर से उधर जाना आनंद लेना घूमना वृक्षों का स्वागत करना पक्षियों का स्वागत करना सबके प्रेम भाव को समझना इस तरह से किए और गाय चलाते हुए तब क्यूकुज बेणु पुनः स्पेशल रूप से एक जगह खड़े होकर के और बांसुरी बजाना प्रारंभ किए। गोप सखा आदि सब घेरे हुए थे, श्री कृष्ण कहे कि अब मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। ऐसे तो बजाते ही थे, लेकिन शरद काल में प्रथम दिन विशेष तरह से बांसुरी बजाने लगे। दोनों चुकूज शब्द का आवाज बजाए और सब देख रहे हैं, यहाँ तक कि गौ आदि भी स्तब्ध होकर के सब दोनों ध्वनि सुन रहे हैं। और उस दिन में उस बेणी में वे श्री गोपी जनों के मन को मोहने वाला राग या बात गाने लगे। विशेषकर सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं, तद ब्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदय काश्चि परोक्षम कृष्णस्य स्वसखी व्यं वर्णयन। काश्चित तद्भाव विशेष युक्ता कुछ गोपियां जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, प्रिय मानती थी, उस तरह के स्नेहवती स्त्रियां गोपियां ब्रज स्त्रिय ब्रज की स्त्रियां श्री राधा विद्याद्या जिनमें श्री राधा प्रधान हैं, ऐसी गोपियों ने उस गीत को सुना। कहाँ सुना? तो ब्रजस्त्रीय शब्द बता रहा है कि वे लोग ब्रज में सुन, ये तो श्री कृष्ण के विरह में थे, श्री कृष्ण वन में आ गए तो उनके लिए एक एक पल करोड़ों करोड़ों युग के समान बीतने लगा। तो श्री कृष्ण उनको सांत्वना देने के लिए, उनको सुनाने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसे उस बांसुरी के स्वर से सारा वन आलोकित है, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन विशेष तरह से गोपी जनों के लिए बजा रहे। तो ब्रजस्त्रीय तब आश्रित उस गीत को सुन, कैसा गीत? वेणु गीतम, वेणु गीत का अर्थ है वेणु में गाया हुआ गीत। श्री कृष्ण ने वेणु गीत गाया, इसका मतलब वेणु में बांसुरी में गीत गा रहे हैं। इस गीत का अर्थ गोपी जन समझ रहे हैं। हम जैसे हारमोनियम की पत्ती कोई बजाता है तो वास्तव में हारमोनियम नहीं गाता है, लेकिन फिर भी उसमें स्वर निकाला जाता है और आदमी जब गाता है तो उसका कुछ मतलब होता है। तो श्री कृष्ण बांसुरी में गीत गाने लगे। इसका कारण यह था कि जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में दुखी थी, वैसे कृष्ण भी गोपियों के विरह का अनुभव कर रहे थे, दुखी। यह परस्पर का संबंध, इसलिए उनका स्मरण कर रहे थे, गान कर रहे थे, वेणु गीत कहते हैं। वेणु गीत का अर्थ होता है श्री कृष्ण बांसुरी में गाते हैं। लेकिन इस अध्याय में जो वेणु गीत है उसका अर्थ है वेणु के विषय में गोपियों का गाया हुआ गीत, उसको वेणु गीत कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी में गा रहे हैं और श्री कृष्ण के विषय में और उस वेणु के विषय में गोपियों ने आपस में बातचीत किया है, उसको वेणु गीत कहा गया है। वेणु में क्या कृष्ण गाया इसका पता नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा के समान कुछ पता नहीं है कि कृष्ण बांसुरी में क्या गाए, वो तो गोपियां जानती हैं वो क्या गाए। लेकिन उस गीत को सुनकर के गोपियों ने जो गाया है उसको वेणु गीत कहते हैं, वो समझ में आती है गाय, वेणु गीत कहा जाता है। और हम अगर उसकी व्याख्या करते हैं तो यह भी वेणु गीत है, मतलब वेणु के विषय में या वेणु गीत के विषय में कुछ भी बोला जाए तो वो भी जरूर वेणु गीत। हम लोग वेणु के मुख से नहीं सुनते हैं, कृष्ण के मुख से नहीं सुनते हैं, गोपियों के मुख से वेणु गीत सुनते हैं। श्रीमद भागवत की अद्भुत स्टाइल है, तो वेणु गीत वेणु गीत को सुनिए, क्या गाया था कृष्ण ने बांसुरी में, क्या वो गीत है, तो उस गीत का पता नहीं। इतना ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रज स्त्रीय पद आश्रित किया, ब्रज की स्त्रियों ने राधा आदि स्त्रियों ने उसको सुना और सुन करके कृष्णस्य परोक्षम, कृष्ण से परोक्ष नहीं सामने नहीं, परोक्ष में गीत सुन करके स्वसखी भी अन्य वर्णन अपनी अपनी सखियों से वर्णन करने लगी। उस गीत के प्रभाव के विषय में स्वसखी भी अपनी अपनी सखी। अब यहाँ स्वसखी का अर्थ क्या है? स्वसखी का अर्थ है अपने अपने युद्ध के सखियों को बताने लगना। ब्रज में जिंदगी में शक्तियों का अपना अपना युद्ध है, जैसे श्री राधा का युद्ध है ललिता विशाखा तुम विद्या सुदेवी आदि, और एक युद्ध है चंद्रावली जी का। तो चंद्रावली जी के युद्ध में भी उनके उनके दल की बहुत सी शक्तियां हैं, प्रधान प्रधान उनकी भी आठ शक्तियां, और राधा रानी के भी प्रधान प्रधान आठ शक्तियां हैं। तो इन सब के अलग अलग युद्ध हैं, तो अपने अपने प्राण शक्ति से अपने अपने विश्वास पात्र से जो वेणु युद्ध के विषय में कुछ कहने लगे। सुखदेव गोस्वामी पूर्णतः स्पष्ट कथा कर रहे हैं, विश्वास शक्ति ध्यान बढ़ रहे हैं। तो गीत कैसा था, स्मरोदय, स्मर का उदय हो रहा था। स्मर संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध शब्द है, स्मर का अर्थ होता है कान। बांसुरी के गीत में ऐसी बात श्री कृष्ण बोल रहे थे, और इतना वह मादक गीत था कि राधा आदि गोपियों के मन में काम का उद्रेक हो रहा है। यहाँ बहुत सावधानी से कथा सुननी चाहिए, इस काम का क्या अर्थ है। जनरली संसार में काम का अनुवाद कर दिया जाता है लास्ट, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण को काम कहते हैं या स्मर कहते हैं, लेकिन प्रेमयो गोपरामान कामयुक्तगमत प्रथा, गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण को सुखी करने की जो भावना है, उसी को विद्वानों ने काम शब्द कह करके प्रचार किया है। ये प्रथा है, ये गलत प्रथा, यही प्रथा है। प्रेम को ही काम कहा गया है, ये समझने की बात। जैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो कृष्ण एक व्यक्ति है और माँ यशोदा का जो उनके प्रति प्रेम है, सेवा की भावना है, उसको वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य इसमें। तो उसी कृष्ण को जब सुख देने की वासना गोपियों में होती है, तो गोपियों को उस प्रेम को काम कहा जाता है। जैसा शास्त्रों को समझने की परिपाटी है, उसके अनुसार समझना चाहिए। और शब्द भी ऐसे दिए गए हैं कि उसका अर्थ प्रेम होगा। स्मर का अर्थ होता है स्मरण, और काम का अर्थ होता है कामना। संस्कृत में गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण का प्रेम है, उसमें कभी कंदर्प शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, रतिपति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रतिपति का अर्थ होता है, रति माने कृष्ण के प्रति भाव, और पति माने पालक, महाभाव को रतिपति कहते हैं, बहुत बड़ा प्रेम है उसको रतिपति का। रतिपति का अर्थ रति नामक स्त्री का पति नहीं। तो इस तरह से शब्दों को रखा गया है कि उस, और उमड़ गया, यह अर्थ है। जब कृष्ण प्रेम बढ़ा तो श्री कृष्ण के विषय में वे अपनी अपनी सखी से बात करने लगी, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तद वर्ण तुम आरब्धा स्मरंते कृष्ण उत्तम न सकम स्मर वेगन विक्षिप्त मन से होता। हे नृत हे महाराज करुचि, तद वेणु गीतम वर्ण तुम आरब्धा, उस वेणु गीत को सुनकर उसके विषय में जल्दी अपना कमेंट, अपना विचार देना चाहिए। राधा जी सखियां, तो इतना कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि समर्थ नहीं है, वर्णन नहीं कर सके। बोलना चाहते थे कि उस गीत के विषय में कुछ बोल लो, कृष्ण के विषय में बोला जाते कृष्ण चेष्टितम स्मरणते, कृष्ण के सर्व चित्ताकर्षक श्री कृष्ण के लीलाओं का ऐसा स्मरण की चालता, उनके हाव भाव का, सौंदर्य का, कि वे स्मर देगन विक्षिप्त मनसा, प्रेम के वेग से व्याकुल चित्त होकर के तद वर्ण तुम न आ सकन, उसका वर्ण नहीं कर सकते। वर्ण करना चाहते थे, सब सखियों की दशा है, याद भी है वेणुगीत, वेणुगीत को सुन करके वे श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगी, और चाहते थे वर्णन करें लेकिन नहीं बोल सके। सब वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए, आनंद के सब आंसू थे, और वाणी इतना गदगद ही नहीं हो गई, अवरुद्ध हो गई। गदगद वाणी होती है तो आदमी धीरे धीरे कुछ बोल लेता है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं पाए, कितना प्रेम मरा है, क्यों नहीं बोल पाए? स्मर वेगेना, कृष्ण प्रीति के वेग में विक्षिप्त मन सा उनके मन को व्याकुल कर दिया, विह्वल कर दिया, वो नहीं समझ पाए, वो नहीं बोल सकते। यह है प्रीति का विकार, प्रेम का विकार, ट्रांसफॉर्मेशन। वर्णन करने की इच्छा थी लेकिन वर्णन नहीं कर सका। क्या कृष्ण विचेष्टितम उनको याद आने लगा कि नहीं वर्णन कर सके? इस पर एक जिज्ञासा महाराज ने किया, कौन सा रूप है या श्री कृष्ण की कौन सी लीला उनके मन में उभरी कि जिसके कारण बोल नहीं पाए? तो यही श्रीमद् भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्री कृष्ण का यह रूप उन्हें बारंबार याद पड़ने लगा और इस कारण से बोल नहीं पाए। वरहापीडम नत वरदपुहु कर्णयोः कर्णकारम् विव्रजवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। जादृशं कृष्ण स्मरणं तासं मनसः क्षोभकं जातं तदाह वरहापीडम्। श्री कृष्ण का जो रूप उनके मन में क्षोभ पैदा कर दिया, विह्वल कर दिया, उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। सिख से वर्णन कर रहे हैं, सिर से चालू कर रहे हैं, श्री कृष्ण बांसुरी वादन कर रहे हैं और सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसे हैं? वरहा पीडम, वरह का आपीड लगाए हैं, वरहम का अर्थ होता है मयूर पुच्छम और आपीडम का अर्थ शिरोभूषण मुकुटम, मोर मुकुट धारण किए। वृंदावन में श्री कृष्ण सोना का मुकुट नहीं पहनते, वो कौन भार सिर पर लेने जाए। मैं तो कभी कभी देखता हूँ भगवान विष्णु के सिर पर इतना लंबा रत्न का मुकुट तो बोलता इतना भारी भार भगवान लिए हुए। वृंदावन में श्री कृष्ण इस तरह रत्नों का भार नहीं ढोते। बरहा पीडम, भगवान का श्रृंगार भी बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। मैं तो कहा गया जैसे किसी कामनी के किसी स्त्री के शरीर पर इतना श्रृंगार कर दे कि उसको चला ही ना जाए, तो उस श्रृंगार का लाभ क्या है? तो इतना भारी भारी गहना पहना दीजिए कि हाथ ही ना उठे और सब जकड़ा रहे सारा शरीर। भगवान के ऊपर श्रृंगार का बहुत भार नहीं होना चाहिए, बहुत भारी मुकुट ये। श्री कृष्ण इतना सुंदर है कि उनको सजाने के लिए गहनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या जो आभूषण धारण कराए जाते हैं तो उससे श्री कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती है, आभूषणों की शोभा बढ़ती है। परम पदम भूषण भूषण अंगम, श्री कृष्ण के जो अंग हैं वो भूषण को के भूषण हैं, वो भूषण को भूषित करते हैं। और दुनिया में और लोग जो गहना पहनते हैं तो उस गहना से वे सुंदर लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण पर जो गहना धारण कराया जाता है तो श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के कारण गहना अच्छा लगता है, अब जगह से हो गए इतने सुंदर हैं। तो यह श्री कृष्ण का मुकुट है, आपीड मुकुट शिरोभूषण, वह क्या है? बरह मोर मुकुट, मोर के पुच्छ को भगवान शिव पर धारण करते हैं। बरहावतंस, अवतंस का अर्थ मुकुट होता है, शिरोभूषण, बरह मतलब मोर का पुच्छ, मयूर पुच्छ। तो मयूर पुच्छ अपने सिर पर धारण किए हैं, श्री गोपी जनों को यह स्मरण आने लगा, यह रूप वो लहराता हुआ मयूर पुच्छ सिर पर शोभा दे रहा है। और नटवर वपुः वरहापीडम नटवर वपुः, यहाँ क्रिया इस तरह से लेना पड़ेगा, वरहापीडम विव्रत, जिस शरीर में वर्ह का मुकुट है, ऐसा शरीर जो प्रकट किए हैं, धारण किए हैं, विव्रत कई जगह लगाना पड़ेगा, नटवर बपुह विव्रत, विव्रत में धारण करना, प्रकाशित करना, बपू धारण किया, कैसा बपू है, नटवर, नट से भी वर श्रेष्ठ, नट कट नाचने वाले को जरा रंगमंच पर नाचते हैं, तो श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश किए हैं तो एक नट की तरह प्रवेश किए, नाचते हुए प्रवेश कर रहे हैं, गाते हुए घूमते हैं, ऐसा नहीं किसी दिन कृष्ण को बुखार आ गया बस चुपचाप बैठे हैं, नटवर बपू श्रेष्ठ नट की तरह नाचते हुए तिरकते हुए गाते हुए प्रवेश कर रहे हैं, बात करते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे नट बने हुए लगता है जैसे दुल्हा वर इतना सज करके प्रवेश कर रहे हैं। भारत वर्ष में आप लोगों ने देखा होगा जब लड़का विवाह के लिए जाता है तो उस दिन सूर्य भूषण धारण करता है, तो उसको मुकुट पहनाया जाता है बहुत सुंदर, अब तो लोग पैन चैन पहन कर चले जा रहे हैं, एक दिन भी अच्छा से श्रृंगार नहीं धारण करते है ना, एक दिन भी नहीं, लेकिन भारत वर्ष में अभी भी है कि दुल्हा को सूर्य भूषण धारण कराया जाता है और उसके लिए गीत और नाच की व्यवस्था की जाती है, एक दिन के लिए राजा हो जाता है वास्तव है ना, जिस दिन विवाह होता है उस दिन के लिए तो वो किंग होता है, राजा होता है, उसको गीत सुनाने के लिए लोग जाते हैं, उसको नाच दिखाने के लिए लोग जाते हैं और ससुराल में उसको बहुत पैसा मिलता है। हमारे यहाँ ऐसी पद्धति अभी भी है कि दुल्हा जब जाता है ससुराल विवाह होता है तो खाने बैठता है तो खाता नहीं है, क्या चाहिए क्या चाहिए, वो लड़की के पक्ष वाले माता पिता पूछते हैं क्या चाहिए तो कुछ मांगता है, जब वो देते हैं तब खाता है, इतना मान बढ़ जाता है एक दिन वही व्यक्ति दूसरे दिन किसी होटल में गए तो खा करके पैसा देना पड़ेगा और एक दिन ऐसा होता है खाने के लिए पैसा दिया जाता है हमारा भारत वर्ष अभी भी बहुत अच्छा है, किसी किसी विषय में अभी जो भी संस्कृति बची है बहुत अच्छा। एक बार एक विदेश से भक्त गए थे हमारे गांव में तो हमारे घर के लोग खिलाए पिलाए और इसके बाद उनको दक्षिणा दी, दक्षिणा दी, वो ये कभी नहीं देखे थे, नहीं जानते थे कि खाने के बाद दक्षिणा मिलती, तो हमसे कहते हैं कि ये अजीब देश है कि खाने के कारण पैसा मिल रहा है, तो जनरल नियम है कि आप खाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा लेकिन ये है देश भारत जहाँ की संस्कृति है, कोई हमारे घर पर अतिथि आया साधु ब्राह्मण आया खाया तो खाया और उसको फिर दक्षिणा दे देती, और यह परंपरा विदेश में आए हुए भारतीय भी अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सब जगह प्रचलित, तो हम लोग भी जिस घर में गए गए खाए और खाने के बाद खाने की फीस मिली कितनी उन्नत संस्कृति है वास्तव में, इस परंपरा को बचाए रखना चाहिए, ये जगत में और कहीं नहीं है। तो विशेष करके मैं ये कह रहा था कि जिस दिन लड़का दुल्हा बनकर सिर पर सेहरा बांध करके अपने ससुराल जाता है तो उस दिन उसका बहुत आदर होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो गोपियों को ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हा प्रवेश कर रहा है और उनको दुख भी हो रहा है गोपियों को कि श्री कृष्ण के इतने सुंदर श्री विग्रह पर लीला को हम नहीं देख सकती हैं, हमारे ऊपर लोक मर्यादा का बंधन, धन्य भाग्य है वन के जीवों का जो श्री कृष्ण को इस तरह से देखते हैं। आगे यही वर्णन आएगा तो स्मरण आ रहा है नट वर वपु, नटों में श्रेष्ठ शरीर अथवा श्रेष्ठ नट जैसा शरीर अथवा नट जैसा वर जैसा शरीर भगवान इस तरह प्रकट किया, काछनी काछ कर बिंदा में प्रवेश करते धोती कहीं फंसे नहीं कांटों में, गाय के चरवाहे हैं कमर कस करके बांसुरी बजाना है, गाना है, सब करना है, इस तरह नट श्रेष्ठ नट की तरह। और कर्णयो कर्ण कारण, दोनों कान पर कर्णिकार का पुष्प है, कान दो है, कर्णिकार एक है, कर्णिकार कर्णिकार के पुष्प को आप देखे होंगे कि पीत वर्ण का पुष्प होता है, लंबा होता है पीला। तो श्री कृष्ण इतने शौकीन व्यक्ति हैं कि वो एक पुष्प कभी इस कान पर रखते हैं तो कभी इस कान पर रख लेते हैं, एक कर्णिकार को दोनों कानों में रख रख करके चलते हैं। उनके प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है, लेकिन उनके सुंदर अंग पर कर्णिकार भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो कर्णयो हो, दोनों कानों पर कर्णिकार, एक कर्णिकार रखते बदलते रहते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, ये परम सुंदर है, विदग्ध था, इसको कहा जाता है शौकीन शब्द, उनके कारण प्रसिद्ध है। भगवान आनंद में रहते हैं और बदलते रहते, कभी नया फूल तोड़ करके कान पर धारण कर लेते हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं भारतवर्ष में कुछ लोग लिखने वाले लोग कभी कभी कलम ऐसे धारण कर लेते हैं कान। अब तो बहुत है, कान पर या आंख पर बहुत लोग धारण कर रहे हैं, चश्मा धारण कर रहे हैं, भगवान कभी चश्मा नहीं पहने। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा धारण कर रहे हैं, नेत्रयो हो। क्या चश्मा का संस्कृत क्या होता है पता नहीं, बहुत समय बना नहीं होगा संस्कृत का, इसलिए उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि नहीं। वास्तव में कोई शब्द नहीं है, अगर शब्द रहता तो गंधारी कोई काला शीशा वाला चश्मा डाल दिया, पट्टी नहीं बांधनी पड़ती। ये अंग्रेजों की चीज है न। एक बार में कह दिया था ऐसा कि भगवान चश्मा नहीं पहनते हैं, तो चश्मा पहनने वाले लोग बहुत दुखी है। हमारे पास कंप्लेन आया करते मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लाइक क्या करें, स्वर्ग पर भगवान क्या क्या धारण करते हैं, सुंदर मुकुट धारण करते हैं, कर्णिकार धारण करते हैं कानों पर, वन के खिलने वाले पुष्प धारण करते हैं, तो ये कहाँ लिखा गया है वो चश्मा में धारण नहीं करते, ये कहने की आपको जरूरत क्या है। आप ये कहिए कि कर्णिकार धारण करते हैं, मयूर पुच्छ धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, जो नहीं लिखा गया वो क्यों बोले। जो कुछ भी हो आखिर मिलान तो करना पड़ेगा, कभी कभी मिलान करना पड़ता है, कभी निगेटिव बात बोलनी पड़ती है, तब सब बात सब सब समझ में आती है ना। तो श्री कृष्ण इस तरह कान पर कर्णिका धारण किए हैं। मुझे इसलिए स्मरण बात आ गई कि हम लोग अपने कान पर चश्मे का हंगुल धारण करते हैं, क्या कहेंगे उसको। और श्री कृष्ण के कान पर रहता है कर्णिका पुष्प, रहता बहुत सुकोम। और विधेय वासह वस्त्र धारण किए हैं, वस्त्र कैसा है, कनक कपिसम, कपिस मतलब प्रकाश आभा, उनके वस्त्र की आभा क्या है, रंग क्या है, तो कनक स्वर्ण जैसे पीत वर्ण, पीत वर्ण, पीत वर्ण का कपड़ा है वो भी कनक जैसा है, कनक जैसा सोने जैसा प्रकाशित हो रहा है, और उसमें कोई सिकुड़न नहीं, कुछ भी नहीं, इतना दिव्य पीतांबर पहनते हैं। मैं कभी कभी कथा इस तरह से कहता हूँ तो याद आ जाती है बात, तो आक्षेप करता हूँ, कुछ लोग दुखी होते हैं। कभी कभी जब भगवान के वस्त्र का वर्णन करता हूँ तो मैं कह देता हूँ भगवान कभी नग्न नहीं रहते हैं, तो इसके चलते कुछ जैनी गंज हो गए थे हम पर, क्योंकि जैनियों में कुछ नग्न घूमते हैं, भगवान इस तरह से नहीं घूमते, भगवान बहुत सभ्य व्यक्ति है, वस्त्र पहन कर रहना चाहिए, है कि नहीं, से नंग धड़ंग घुमा करे नागा बाबा हो जाए, ये सब भक्ति नहीं है, पशु जैसा घुमा करे, मनुष्य को ठीक से वस्त्र पहनना चाहिए। नग्न कौन रहते हैं जानते हैं, भूत पिशाच नग्न रहते हैं, भूत प्रेत सब नग्न रहते हैं, विदेशों में लोग नग्न होने के कंपटीशन पर है, और मैं देख करके आश्चर्य किया इस देश में कि पुरुष तो पैर तक वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियां हाफ पैंट पहनते हैं, कहीं कहीं केवल कौपीन लंगोटा पहन कर रहते हैं। यह आश्चर्य की बात है, ये भूत प्रेत का लक्षण है वास्तव में, है ना। इस देश को देख करके मैं दंग हो गया, जो कई वर्ष पहले देखा, अभी भी भारत वर्ष में यह नहीं है। शरीर को ठीक तरह से ढकना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए। खैर, मैं भगवान की लीला का वर्णन कर रहा हूँ, अब इतना नीचे उतर कर वृंदावन से न्यूयॉर्क में मां लाना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हो एक बार स्मरण आ जाता है, क्योंकि हम लोग ये देख सुन रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में क्या है कि वस्त्र पुरुष भी पहनते हैं, स्त्रियां पहनते हैं, लेकिन पुरुष हो सकता है कि केवल जानू तक घुटने तक वस्त्र पहने या कम वस्त्र पहने, पर स्त्री तो पैर तक ढके रहती है ना। आप लोगों ने कृष्ण का वस्त्र देखा होगा, राधा रानी का, राधा रानी के पैर तक ढके रहते हैं। यह है वस्त्र पहनने की विधि। इधर के लोग भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत नग्न रहते हैं, तो भगवान ने वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्र में भी उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद है, कनक कपिसम। और वैजयंतीम च मालम विभ्रत, और माला धारण किए हैं। कैसी माला? वैजयंती, पांच रंग के पुष्पों की एक माला होती है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। उसको पहनने पर मनुष्य शोक से, रोग से बच जाता है, विजय प्राप्त करता है, इसलिए उसको वैजयंती माला कहते हैं, विजय देने वाली माला, और बहुत लंबी बनाई जाती है। पांच रंग होते हैं उस माला में, पुष्पों के पांच पुष्प होते हैं, तो उसको वैजयंती माला कहते हैं। ये भगवान को माला पहनाई जाती है, और माला यदि भगवान के गले से उतार करके किसी को पहनने को दी जाए, तो चाहिए कि उसको पहने रहे, पहनने से शुभ होता है। आजकल के लोग पहनते नहीं है, उनको माला दीजिए तो तुरंत निकाल कर रख देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसादी माला को धारण करना चाहिए, उससे रोग दुख शोक दरिद्रता मिटती है, सुख मिलता है। ऐसा बहुत साधारण है। एक बार दुर्गाशा मुनि माला लेकर आ रहे थे बैकुंठ से, भगवान का प्रसादी माला स्वर्ग होते हुए, तो इंद्र उनको प्रणाम किए दुर्गाशा जी को, तो खुश होकर के इंद्र को माला दिए भगवान का प्रसादी माला। तो इंद्र इतने आए स्वर्ग में उन्मत्त थे, उन्होंने सुना कि कौन माला पहनिए, कितना कितना दिव्य रत्न की माला पहनते हैं, तो फूल की माला, तो उसको वे ऐरावत के सिर पर रख दिए, अपने हाथी के सिर पर रख दिए, और वो अपनी सूंड से माला लिया, पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी इसको देख रहे, इस पर उन्होंने घोर साप दिया इंद्र को कि तुम धन के घमंड में हो, तुम्हारा सारा धन ऐश्वर्य चला गया, तो वे बिल्कुल दीनहीन हो गए। इसके बाद असुरों ने आक्रमण किया और स्वर्ग छीन लिया, केवल भगवान के प्रसादी माला का तिरस्कार करने से। तो बहुत गर्व के साथ धारण करना चाहिए। आरती के समय भगवान का जल आता है चरण चरणों तक, उसको धारण करना चाहिए, उनके चरणों पर चढ़ाए हुए पुष्प को सूंघना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। इस तरह से कई कई चीजें, उसको निर्माल ले कहते हैं, उसको धारण करना चाहिए। निर्माल ले धारण करने वाला व्यक्ति कभी अभिभूत नहीं हो सकता, हरे कृष्ण, कभी पराजित नहीं हो सकता। धारण करना चाहिए, और भगवान माला धारण करते हैं, तो भगवान माला धारण करते हैं तो उनके प्रसाद को भक्त क्यों नहीं धारण करेगा, है कि नहीं। कुछ तो ऐसे भक्त होते हैं जो केवल भगवान का प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, मतलब ऊपर के अंगों में, और केवल माला धारण कर, मतलब उनके खाए हुए पदार्थ को खाते हैं, उनके पहने हुए वस्त्र को पहनते हैं, निर्माल ले कहते हैं उसको प्रसाद। यह भी एक भक्ति का अंग है, अतः बड़े आनंद के साथ माला धारण करनी चाहिए। भगवान माला धारण किए थे और वृंदावन प्रवेश कर रहे थे, तो माला झूम रही थी, रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन। वेणो हो रंध्रान वेणु के छिद्रों को छेदों को अधर सुधया पूरयन अपने ओठों के रस से पूर्ण कर सिक्त कर रहे थे। ये गोपियों को स्मरण आ रहा था और यह उनके दुख का कारण था कि अधर सुधा पर उनका हक है, गोपियों का हक है, और उसको ये वेणु पी रहा है और पूरे छेदों में भर रहे। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके ओठों से जो लार टपकता है वो बांसुरी के छिद्रों में गया है और उस दिव्य अधर सुधा से आलिंगित स्वर जगत को आलिंगन करता है, बहुत सुख होता है। बांसुरी इतना निकट है, वो वेणु श्री कृष्ण के अधरों से सटा हुआ है और उंगुलियां उसके छिद्रों पर फिर गई। गोपी जन तो कभी कभी कहती थी कि ये हमारी सौत है, बाप रे बाप, 10 नंगुलियों से सेवा करा रही है। जैसे पाद संवाहन किया जाता है ऐसे कहते श्री कृष्ण को ये खड़ा रखती है, बैठ करके बांसुरी नहीं बजाते। तो कहती है ये राण कृष्ण को तंग कर दी है, अगर कहीं भी मिल जाए तो इसको पत्थर पर घिस करके तोड़ करके और जमुना में फेंक दो जला, इतना प्रिय। तो एक बार तो राधा रानी कहती हैं कि श्री कृष्ण गोवर्धन का पर्वत उठाने में झुके नहीं थे लेकिन बांसुरी को उठाने में झुक जाना पड़ता है और उसका मसाज करते हैं, चरण सेवा करते हैं, प्रत्येक छेद पर हाथ फिरा रहे हैं और अपने ओठ का रस दे रहे हैं, अधर सुधा दे रहे हैं। कि बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं ये नहीं कहा गया है। वेणु के रंध्रान रंध्रों को अधर सुधया पूरे ये अद्भुत भाव व्यक्त कर रहा है। ऐसे सिंपली ये कहा जा सकता था कि बांसुरी बजाते हुए प्रवेश किए, वेणो हो रंध्रान वेणु के छिद्रों को अधर सुधया पूरयन। अधर सुधा श्री कृष्ण के अधरों पर जो थोड़ा थोड़ा जल उभरता है उसको अधर सुधा कहते हैं और बांसुरी के छिद्रों में वो भर रहे हैं। गोप वृंद वृंदारायण स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोप वृंद है और गोप वृंद से घिरे हुए श्री कृष्ण गीत कीर्ति, गीत कीर्ति है मतलब गोप वृंद उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। कौन कीर्ति? तत्कालिक कीर्ति, कृष्ण कितना सुंदर है, कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, वो गाते थे कृष्ण तुम्हारा पीतांबर कैसा है, मोर पंख कैसा है, तुम कितना सुंदर लगते हो, वही कीर्ति गा रहे थे। श्री कृष्ण के सौंदर्य की कीर्ति गा रहे थे और इस तरह श्री कृष्ण उस कीर्ति को सुनते हुए वृंदारण्यम प्राविशत, वृंदा अरण्य में प्रवेश कर रहे, वृंदावन में प्रवेश कर रहे। वन को अरण्य कहा जाता है, वृंदारण्यम, वृंदा के नाम से उस वन का नाम है, वृंदा तुलसी जी को कहते हैं तो आज भी प्रसिद्ध वृंदावन वृंदा अरण्य। अरण्य का अर्थ है जहाँ कंपटीशन नहीं है, जहाँ झगड़ा नहीं, रण जहां नहीं है, जहां रण नहीं होता है, कोई कलह नहीं होता है, उसको अरण कहते हैं। अरण्य वन एक ऐसा स्थान होता है जहां कलह नहीं है, डिवीजन नहीं है कि हमारा है तुम्हारा है। शहर में तो सब जगह डिवीजन, तुम्हारा घर है तो हमारा घर है, तो ये सीमा तो वो सीमा, सीमा निर्धारण के लिए कितने लोग कोर्ट में रोक जाते रहते हैं, हमारा है तुम्हारा है ये है वो है, यह रोड है या यह पार्क है वह है, लेकिन जंगल को भगवान ने जैसे बनाया वैसे है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं, किसी का नाम नहीं है ना। भगवान ने जैसे बनाया वैसे है, इसलिए वन को देखने पर, पर्वत को देखने पर और समुद्र को देखने पर भगवान की सृष्टि का स्मरण आता है, वास्तव में सब भगवान की है। और बाकी और जो सामान है उनमें आदमी का हाथ लग गया है, तो बाद कौन एयरपोर्ट है, तो कैनेडी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वन में इस तरह कोई विवाद नहीं, सब कुछ भगवान का है, तो इसलिए उसको अरण्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण वृंदारण्य में, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन कैसा है? स्वपद रमणम, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से अत्यधिक रमणीय हो गया है, सुंदर हो गया है। स्वपद रमणम सही असाधारण पद ही सर्वत्र अंकित रमणम रति जनक वृंदावन प्राश। तो वृंदावन की विशेषताएं हम बता रहे हैं स्वपद रमणम, जो श्री कृष्ण के असाधारण स्पेशल चरण चिन्हों से अंकित है, अतिशय सुंदर है, उसको स्वपद रमणम कहते हैं। अथवा स्वपदात अपि रमणम, भगवान के अपने धाम वैकुंठ से भी जो अधिक सुंदर है उसको स्वपद रमणम कहते, या उनके चरणों के लिए जो रमणीय है, घूमने लायक हुआ, ऐसा सुंदर सजा हुआ वृंदावन है, श्री कृष्ण के चरणों के लिए रमणीय है, घूमने लायक, अथवा उनके चरणों से सुंदर हो गया, ऐसे वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। तो ये रूप गोपीजनों को याद आया और इसीलिए उनके मन में श्री कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई, अतः वे वर्णन करने में समर्थ नहीं हुए। तो जिस रूप का, जिस लीला का वे वर्णन नहीं कर सके, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इस रूप को और इस लीला को चाहते थे वर्णन करना, लेकिन वर्णन नहीं कर सके। तो एक एक शीर्षक दिया गया है, अब मोर मुकुट का, बरहा पीठ का वर्णन करना चाहती थी तो उसमें घंटों बीत सकता था। बरहा पीदम नटवर बपुह कर्ण यो कर्णिकारम विभ्रत वास कनक कपिशम वय जयंती निचमाला रंध्रान वेण रधर शुभया पूरयन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गोपों के साथ, गोप उनकी कीर्ति गा रहे हैं और इस प्रकार विलक्षण उनका स्वरूप है। यह है वेणु गीत का प्रारंभ। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और इस श्लोक ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न बनाया है। दो श्लोक वो सुने थे शुरू में, उसमें एक श्लोक ये है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्योभिरे विरे। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी संबोधन बार बार राजा को कर रहे हैं, महाराज परीक्षित को, क्योंकि बहुत रहस्यमय लीला का वर्णन हो रहा है, इसलिए नृप राजन वो तो कथा सुन ही रहे हैं, श्रोता को बार बार इस तरह से संबोधित करने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि राजन बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत रहस्यमय लीला है, गोपीजनों के भाव को समझना है। प्राय हम लोग भी सुनते हैं और कभी कभी कहते हैं गोपी भाव गोपी भाव गोपी भाव, तो क्या गोपी भाव है इसको जानना चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये चर्चा मत करो, है गोपी भाव के अभी बात मत करो, मर जाने के बाद दूसरे शरीर में करना है, गुरु ऐसा कहते हैं, अभी तुम इसको योग्य नहीं हो। ठीक है, लेकिन योग्य बनने की विधि क्या है? योग्य बनने की कुछ विधि है ना? विधि यही है श्रवण, शुद्ध ढंग से परंपरा में यदि सुना जाए तो व्यक्ति तत्काल योग्य हो सकता है। अच्छा मान लीजिए यह कहा जाए कि श्री कृष्ण के लिए पुरुष अभी योग्य नहीं है गोपी भाव को, लेकिन स्त्रियां तो ऑलरेडी योग्य है कि नहीं? पुरुष को तो सोचना पड़ेगा कि मैं गोपी हूँ, लेकिन स्त्रियों को तो ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने उनको बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है, उनको ये कल्पना नहीं करना है कि मैं स्त्री हूँ, अपने आप अहुमति है कि मैं स्त्री हूँ, तो वो तो श्री कृष्ण से इस तरह का प्रेम कर सकती है। पुरुष भी कर सकते हैं यदि यह भाव आ जाए, तो भाव आएगा सुनने से। तो राजन संबोधन किया जा रहा है, इति इस प्रकार से सर्वभूत मनोहरम वेणु रमम श्रुत्वा सर्व ब्रज स्त्रिय वर्णयंत आदि अभिरे भिरे। इस प्रकार वेणु गीत हो रहा था, श्री कृष्ण का बांसुरी बजा रहे थे, तो वह गीत कैसा है? सर्वभूत मनोहरम, सर्वेशां भूतानां प्राणिनां मनोहरम किमुत्तासाम इति भाव। वह वेणु गीत ऐसा था कि किसी भी जीव के चित्त को खींच सकता, समस्त जीवों के मन को हरने वाला था, फिर गोपियों के मन को हरने के लिए कौन बड़ी बात, उनके लिए तो कहना ही क्या है कि नहीं। वो तो उनका चित्त पहले से ही भगवान में आसक्त है, तो कृष्ण में जो आसक्त चित्त वाली है उनके चित्त को खींच लिया, तो इसमें तो कहना ही क्या है। वह गीत इतना मादक था, इतना मधुर था कि सर्वभूत मनोहरण, समस्त जीवों के मन को हरने वाला था। अब सर्वभूत के भीतर केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग, दूब, घास, सबके मन को खींचने वाला था। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त हो रहा है, सर्वभूत मनोहरण, समस्त प्राणियों के मन को हरने वाला। अब समस्त प्राणियों में 84 लाख जोनियों में जितने जीव हैं सब आ जाएंगे। श्री कृष्ण के उस वेणु गीत के साथ जीवों का संबंध है वास्तव में। तो इस संसार में ऐसा कोई गायक नहीं है, ऐसा कोई वादक नहीं है कि उसके गीत को सुन करके और समस्त प्राणियों का चित्त लग जाए, कोई ऐसा नहीं है। कुछ आदमी आकृष्ट हो सकते हैं और कुछ ऐसे गायक होते हैं, बजा बजाने वाले होते हैं जिनसे सांप आकृष्ट हो जाते हैं, हरण आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन वृक्ष लता आदि सब आकृष्ट हो जाए, पत्थर तक आकृष्ट हो जाए, ऐसा कहीं नहीं सुना जाए। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जड़ पदार्थों में जंगम का धर्म उपस्थित हो जाता था। जैसे वृक्ष आदि नहीं, पत्थर आदि जड़ है तो वे ऐसे पिघलने लगते थे जैसे लगता था कि ये चेतन हो गए, और चेतन वस्तुएं ऐसी स्तंभित रह जाती थी, गाय या मनुष्य आदि, तो लगता था कि ये जड़, हिलते डुलते नहीं। इन सबका वर्णन आगे आएगा। तो श्री कृष्ण के बांसुरी गीत को सर्वभूत मनोहरम कहा गया, समस्त जीवों को मन को हरने वाला। भगवान श्री कृष्ण के इस वेणु वादन लीला को जब बड़े बड़े वैष्णव सुनते हैं तो उनके मन में एक अभिलाषा उदित होती है कि हे श्री कृष्ण, कृपा करके एक बार हमें वो गीत सुना दीजिए। और वह गीत सुनते ही श्री कृष्ण प्रेम मर जाता है, ऐसा वो मादक गीत है। एक लेख लिखा है कि वैष्णव ने, उसका नाम है प्यारे कन्हैया अपनी बांसुरी सुना दो, एक लेख है, बहुत बड़ा लेख, सुंदर किताब है छोटी सी, बहुत बहुत सुंदर उसमें प्रार्थना है ब्रज भाषा में, अपनी बांसुरी सुनाए। तो जो कुछ गुण चाहिए कृष्ण प्रेम के लिए बांसुरी का शब्द सुनकर तो अपने आप हो जाएगा, समस्त अपेक्षित गुण आ जाएंगे। तो वेणु रवम सर्वभूत मनोहरम, तो ब्रज की स्त्रियां उसे सुन करके आपस में आलिंगन करने लगी, धीरे धीरे आलिंगन करने लगे। इसका क्या मतलब है? यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण के वेणु गीत को सुन गोपी है तो सर्वभूत मनोहर गीत था, उसको सुन करके वे आपस में आलिंगन करने लगे। इस आलिंगन का ये अर्थ है कि हृदय तो श्री कृष्ण से आक्रांत है, कृष्ण के अतिरिक्त हृदय में और किसी का स्मरण नहीं है, तो सखियां आपस में आलिंगन कर रही हैं यह मान करके कृष्ण को मैं आलिंगन कर रही हूँ। प्रत्येक गोपी यही सोच रही है कि मैं कृष्ण को आलिंगन कर रही हूँ। बांसुरी ने इस तरह उन्हें पागल कर दिया, और उन्हें दूसरे की संभावना नहीं, पास में सखी खड़ी है और तो वो सोच रही है कोई सखी की कृष्ण है, इतना स्मरण आ रहा है बांसुरी गीत के कारण तो उसका आलिंगन करने लगी। परस्पर सभी गोपियां यही सोच रही हैं कि ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, दूसरे का आलिंगन करने लगे। अथवा वेणु गीत सुन करके करने के, उनके सेवा करने के, उनके साथ बैठने के, खेलने के, झूला झूलने के, ये लालसा उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि अंततः मनुष्य तो किसी न किसी के साथ रह ही रहा है कि नहीं, किसी न किसी को आलिंगन में ले रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी से कुछ ले रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, गा रहा है। इन जीवन में वह कब समय आएगा कि कृष्ण के साथ घूमने को मिलेगा, बैठने को, बात करने को, या उनको अपने आलिंगन में लेने का, या उनके आलिंगन में जाने का कब सौभाग्य मिलेगा? तो जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण इस तरह से विद्यमान थे वहां इस प्रकार का सौभाग्य बांसुरी ने ऐसा चमत्कार किया कि गोपियों के मन में ये भाव हो गया कि प्रत्येक गोपी कृष्ण है और उसका आलिंगन कर रहे हैं। अद्भुत चमत्कार। बांसुरी को सर्वभूत मनोहरम कहा गया है। इस विषय पर हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, केवल बांसुरी पर क्या क्या चमत्कार बांसुरी पैदा करते हैं। एक भक्त कवि ने लिखा है कि एक गोपी कह रही है भगवान श्री कृष्ण से कि मुरहर रंधन समय मां करू मुरली रवम मधुरम, हे मुरारी आप सब समय बांसुरी बजाओ, हम मना नहीं करती हैं, लेकिन भोजन के समय मत बजाया करो। जब हम भोजन पकाती रसोई करती हैं तो उस समय मत बजाया करो, क्योंकि सूखे ईंधन में रस बहने लगता है तो आग बुझ जाती है, और आग फूंकते फूंकते हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, धुआं निकलता है, भोजन बन नहीं पाते। तो जब हम लोग भोजन बना लें, तैयार कर लें, इसके बाद तुम बजाया करो। जो सूखा ईंधन है, सूखी लकड़ी है और उसमें रस बहने लगता है तो जलेगी कैसे? इस तरह से श्री कृष्ण उत्पात करते थे। वो ठीक भोजन आदि के समय बजाना चालू करते थे। और बांसुरी में इतनी मादकता थी कि लगता था जैसे किसी को रस्सी में बांध करके खींचा जा रहा है, वैसे जहां से ध्वनि आती थी उधर गोपियां भागती चली जाती थी। और लोग कहते थे क्या हो गया इसको, अकस्मात मेंटल डिजीज हो गया, क्या हो गया, पता नहीं चलते क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गए। घर के लोग डांटते थे, सास ससुर सब तबाह रहते थे। लोग कहते जाकर कहीं से वो प्रेताचार्य बुला लाओ, ओझैत बुला लाओ, कोई मंत्र पढ़ेगा, कोई भूत लग गया, कोई कुछ लग गया। एक भक्त कवि ने लिखा है कि एक घर में एक गोपी हा हा ऐसे करके पड़ गई कृष्ण के विरह में, कृष्ण के पास जाना चाहते, बांसुरी की ध्वनि सुन करके पड़ गई। तो कोई कहता था कि दवाई लाओ, कोई कहता था हॉस्पिटल ले चलो, कोई कहता था ओझैत बोला, ओझैत समझते हैं ओझा झाड़ने वाला, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था ग्रह लग गया है, कोई ये हो गया है वो हो गया है। तो भक्त कभी कहते हैं कि सब लोग सब उपाय कर रहे थे, पर कोई ये नहीं कर रहा था कि जा करके कृष्ण के हाथ से बांसुरी छीन कर फेंक दे, बस दवा हो जाएगी। सब सबसे बड़ी दवा यही थी, कोई किसी भी तरह से अगर बांसुरी को छीन करके फेंक दे तो सब ठीक हो जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। ये श्री कृष्ण इस तरह से बांसुरी बजाया करते। एक गोपी तो यहाँ तक कहती है कि बांसुरी की दवा है वो तो उपाय मैं कर ली हूँ, आपस में सखियां बातचीत करती हूँ और कहती हैं कि कानन दय अंगुरी रही वो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजाई है, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई। ये ब्रजभाषा में रसखानी जी का पद है। कानन दय अंगुरी रही वो, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे यहाँ तक गोवर्धन पर चढ़ कर भी, तो कानों में अंगुली डाल लूंगी, सुनाई नहीं पड़ेगा, हो खत्म हो गया प्रभाव, सुनाई नहीं पड़ेगा तो हमारे अंदर कोई उन्माद नहीं आएगा। कानन दय अंगुरी रही वो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजाई है, मोहिनी तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गंधित गई। गोवर्धन पर चढ़ करके चाहे कितना भी गाएंगे, आवाज चाहे ब्रज में जितना आएगी, लेकिन कान में उंगली दे करके रहूंगी उसका प्रतिकार हो जाएगा। बांसुरी को तो काउंटर कर दूंगी, उसका उपाय है, लेकिन एक बात मैं कह रही हूँ सबसे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, ब्रज के सभी लोगों से मैं आज ही खोल करके कह देती हूँ कि तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल कहू कितनो समझी है, मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई है। ऐसे कहते हैं कि बांसुरी की दवा है उंगली डाल करके रखूं, लेकिन सखी मैं आज ही कह देती हूँ, कोई दोष मत देना, अगर मुस्काता हुआ वह नंद का लाला मेरे सामने आ जाएगा तो सखी वह मुस्कान संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझाई है, माई रिवा मुख की मुस्कान, माई सखी को कहते हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई है, नहीं संहारा जाएगा, नहीं संहारा जाएगा, नहीं संहारा जाएगा। इसलिए इस गली में कृष्ण को आने मत देना। अब आंख बंद करके तो काम धंधा होगा नहीं, चलो भाई कान बंद करके तो कोई काम हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके कोई चल नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं दिखा और हंसता हुआ दिखाई पड़ गया तो बस अब कल नहीं संभाल पाएंगे। ये तो भगवान के मुस्कान का प्रभाव, उनके बांसुरी का प्रभाव, गीत का प्रभाव। एक एक विशेषता पर भक्त कवियों ने बहुत बहुत ग्रंथ लिखा है। वास्तव में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय पर याद आ जाती हैं। अब यहाँ इस बात का सहज स्मरण आ रहा है कि जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है और जो भारतवर्ष की कुछ लोकल भाषा जानते हैं वही इसका स्वागत कर सकते हैं। तो जिसको ब्रजभाषा का पता ही नहीं है वो क्या इन छंदों का और कविताओं का रस लेगा भगवान की भक्ति का, है ना। आप देखिए बिलमंगल ठाकुर ने लिखा है कृष्ण करणा में, उसमें बांसुरी के विषय में उन्होंने बहुत लिखा है, कृष्ण के रूप के विषय में, लीला के विषय में। तो जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है उस ग्रंथ का वे आस्वादन नहीं कर पाते। ऐसे अनुवाद होगा लेकिन अनुवाद में वो रस आ ही नहीं सकता। उन शब्दों में जो रस है वो दूसरी भाषा में आ ही नहीं सकता। कृष्ण करणामृत के जो श्लोक है उनका हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए तो हिंदी तो चलो संस्कृत से मेल जोल की भाषा है ना। संस्कृत के प्राय शब्द जेल कहते हैं हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती में आते हैं, तेलुगु में आते हैं, बंगला में आते हैं, आ जाते हैं जेल कहते हैं। लेकिन ऐसी भाषा जिसमें उस शब्द से इस शब्द से कोई मेल ही नहीं है तो आ नहीं सकता। जैसे संस्कृत का प्रेम शब्द है, प्रेम शब्द का अर्थ होता है जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं तो इस भावना को प्रेम कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो लव शब्द है उसका अर्थ होता है जब हम दूसरे से सुख पाना चाहते हैं, उस भावना को कहते हैं। ट्रांसलेशन आएगा ही नहीं, उतना मतलब कंप्लीट अर्थ नहीं ले पाता है। इसलिए इन भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है यदि कोई चाहता है उस रस को पाना। हम लोगों का तो परम भाग्य, हमारा स्पेशली वास्तव में, मैं प्रभुपाद जी ने कहा तुम वृंदावन में रहो, उसी ब्रज में जहाँ की लीला में कह रहा उसी स्थान पर रहने को मिला। और वो सारी भाषाएं अपनी भाषा है, ब्रज भाषा या हिंदी, जो कुछ भी, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत बहुत पढ़ते रहते हैं। इस तरह की बात एक आस्वादन होता है, आनंद उत्पन्न होता है। सर्वभूत मनोहरम समस्त जीवों के चित्र को खींचने वाला वेणु गीत, और उस वेणु गीत के विषय में भक्त कवियों ने बहुत बहुत कहा। तो गोपियां वर्णन करने लगी और सखियों से आलिंगन करने लगी। क्या वर्णन करती हैं? वेणु गीत अब प्रारंभ हो रहा है। गोप्या उच्च हो गोपियां बोली, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाना सख्य पशु ननु निवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टै जुष्टं जैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमक्षम्। सबसे पहले गोपियों के गीत को समझने के लिए गोपियों के चरण शरण को ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी बात को उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जासाम बुद्धे तवागर्थ जासाम एव प्रसादतः गोपी ही प्रपद्ये ताहजा भी स गंभीर आशय योजितः। जासाम बुद्धे तवागर्थ, जिनके वाक्य का अर्थ है समझ में कैसे आएगा, जासाम एव प्रसादतः, गोपी जनों के वाक्य का अर्थ गोपी जनों की कृपा से ही समझ में आएगा, अतः मैं उन श्री गोपी जनों के चरणों की शरण लेता हूं और उनकी कृपा से इस वेणु गीत के गंभीर आशय को कुछ व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूं, परंतु मैं उतना नहीं समझ पाऊंगा जो उनका आशय होता है। वेणु गीत को तो गोपियां समझती हैं और वेणु गायक समझते हैं, दो ही जान सकते हैं वास्तव में, और तीसरा व्यक्ति उतना नहीं समझ पाएगा, परंतु उनकी कृपा से सनातन गोस्वामी समझ रहे हैं। दाएं बस कर रहे हैं कि मैं क्या समझूंगा। तो गोपियां कहती हैं आपस में संबोधन करके, अलग अलग झुंड में अलग अलग जूथ में वर्णन कर रही हैं, कहीं चंद्रावली वर्णन कर रहे हैं, कहीं राधा रानी, यहाँ पर अब ये ललिता जी का उद्गार व्यक्त किया जा रहा है सती का कारों के मत के अनुसार। सख्य हे सखियों, ये संबोधन है। सखी शब्द संबोधन में आया है तो इसका अर्थ यह है कि मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ सखियों, ये तुम लोगों को अपने आप मालूम है, ज्ञात है। संबोधन में ये भाव आ गया, ज्ञात है क्या कि वयस्य ही सखभी सह, सखाओं के साथ पशुओं को चराते हुए अनुविवेशय, तो पशुओं के पीछे पीछे, गायों के पीछे पीछे दोनों पुत्र चलते हैं नंद बाबा के, कृष्ण और बलराम, ब्रजेश सुतल। तो गौओं के पीछे पीछे संकेत मधुर ध्वनि आदि करते हुए ब्रजेश नंद गोप तस्य सुतय राम कृष्ण, ब्रजेश के दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम गौओं के पीछे पीछे वन में प्रवेश करते हैं, और उस समय उन दोनों में से जिसके मुख पर बांसुरी लगा होता है, देणु लगा होता है, उस कृष्ण का मुख है जिन्होंने नेत्रों से पिया है, जिनके मुख को दुर्भागी जनों ने, आइए जिन्होंने भी जय, जिनके द्वारा वो मुख पिया जाता है, वास्तव में आंखों का एकमात्र फल यही है, इसके अलावा आंखों का परम फलम न विदामा, हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, वास्तव में आंख मिलने का दूसरा फल नहीं है। क्या फल है कि गायों के पीछे पीछे जब कृष्ण बलराम चलते हैं, कृष्ण बलराम के साथ साथ चलने पर कृष्ण के मुख पर जो वेणु है, अनु वेणु जुष्टम, अनु का अर्थ निरंतर, वेणुना जुष्टम सेवितम, निरंतर बांसुरी वेणु उनके मुख पर विराजता है। तो श्री कृष्ण के ऐसे वेणु युक्त मुख को जिन्होंने पिया है अपने नेत्रों से, तो उन्होंने अपने नेत्रों का परम फल पाया है। हमारा तो अभाग्य है कि हम कभी इस तरह से नहीं देख पाए, मतलब तो हमसे अधिक भाग्यशाली वन के मृग हैं, खग हैं या गोप बच्चे हैं। हमको तो विधाता नारी का जन्म देकर पराधीन कर दिया, लोक मर्यादा में बांध दिया। हमारा भाग्य नहीं है कि हम वन में जाएं और श्री कृष्ण के बांसुरी वादन करते हुए मुख को इस प्रकार देख सके। इस तरह गोपियां पछताती थी, रोती थी, वे चाहती थी कि हम वृक्ष हो जाए, हम हरिण हो जाए या हरिणी हो जाए, गाय हो जाएगी, कृष्ण के साथ रात दिन घूमेंगे। तो इतना प्रेम था गोपियों का कि वे संपूर्ण जगत को प्रेम में देखती थी। उनकी दृष्टि में ऐसा दिखाई देता था कि प्रत्येक जीव कृष्ण के प्रेम में विभोर है, हमको छोड़ करके, और सब भाग्यशाली हैं, हम अभाग्य। तो श्री कृष्ण जब वन में प्रवेश करते थे तो अनुवेण जुष्टम उनका मुख रहता वक्त्र, और उस वक्त्र को बांसुरी से युक्त मुख को, मुखचंद्र को जय निपीतम, जिनके द्वारा पिया जाता था, दर्शन नहीं कहा जा रहा है, गोपी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से उनके मुख को पिया है, जो पीते और नितरम पीतम खूब छक करके मन भर करके उनके मुख को पीते हैं, तो उन्हें ही आंख का फल मिला है। वास्तव में अक्षण बता, जिनको अक्ष है, इंद्रियां हैं या नेत्र हैं, तो उनके नेत्रों का इदम फलम, यही निपानम कृष्ण के मुख को पीना ही, अर्थात प्रिय दर्शनम व फलम, श्री कृष्ण के मुख का दर्शन ही फल है, और कुछ भी फल नहीं है। अतः अस्माकं चक्षुः साफल्यं न किमपि तदानीं तथा दर्शनाभावात्, हमें अपनी आंखों का फल नहीं मिला सखी, और सबको अपनी आंखों का फल मिल गया, सब देखते हैं कृष्ण के मुख को लेकिन हम नहीं देख पाते। अतः तदानीं अस्माकं तद प्राप्त सर्वं व्यर्थम इति भाव, इसलिए विधाता ने हमें नारी का जन्म देकर हमारा सब कुछ व्यर्थ कर दिया। यदि हम इस तरह स्त्री नहीं बनी होती तो कृष्ण के साथ वन में चले जाते, हम गोप सखा होती तो कृष्ण के साथ चली जाती, या गाय रहती तभी कृष्ण के साथ चली जाती मन में, लेकिन नारी बनाकर विधाता हमें मार डाला, दुख दे रहा है, हमें अपनी आंखों का फल नहीं मिला, हम खूब मन भर करके कृष्ण के मुख को देख नहीं सके। यह है वेणु गीत का पहला श्लोक। लेकिन समय भी अपनी गति से बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में चल रहा हूँ। एक एक श्लोक में एक एक सिटिंग खत्म होना चाहिए कम से कम, इसे बहुत गंभीर गंभीर भाव है। आसन और दूसरी सखी कहती है, सूत प्रवाल बरह सबको उपलब्ध माला अनुपृत परिधान विचित्र वेश मध्य गिरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे जथा नटवर क्वच गायमान। अन्य आहु अन्य सखियां बोल रही हैं कि जब श्री कृष्ण आम के पत्तों को बांधते हैं अपने सिर में इधर उधर, चूतक प्रवाल, चूतक माने आम और प्रवाल माने पत्ता, नया नया पत्ता, नव पल्लव और बरह मयूर पुच्छ, स्तबक फूलों का गुच्छा और अब्ज माला और कमल माला, इन सबसे युक्त और परिधान विचित्र वेश और विचित्र वस्त्र पहनकर विचित्र अलंकार करके जब दोनों भाई कृष्ण बलराम गोपाल गोष्ठी में जब नाचना चालू करते हैं, गाते हैं, तरी सखी उस समय जिन लोगों ने कृष्ण को देखा है वास्तव में उन्हीं को अपने नेत्रों का फल प्राप्त हुआ है, बाकी को तो जीवन का फल मिला नहीं। हमारा ऐसा भाग्य नहीं है कि हम श्री कृष्ण को देख सके। ये गोप सखा कितने भाग्यशाली है कि उनके बीच में कृष्ण बलराम नाचते हैं और केवल दर्शन ही नहीं करते हैं, वो श्री कृष्ण को आलिंगन में भी लेते हैं, छूते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, एक साथ चलते हैं, नाचते हैं। इनका बहुत बड़ा भाग्य है, मतलब अपने दुर्भाग्य की कथा कह रहे हैं और बाकी सारा जगत सौभाग्य से भरपूर दिख रहा है। यही है प्रेम वास्तव, इसको महाभाव कहते हैं। उस भाव में ऐसा दिखाई देता है, और सचेतन वस्तुओं की बात तो छोड़ दीजिए, जड़ वस्तुओं के प्रति भी उनकी ईर्ष्या होती थी, जैसे बांसुरी के प्रति, अभी ये मुंह से लगी हुई है बांसुरी, उसके प्रति ईर्ष्या होती थी, विशेष करके राधा रानी को, और वो प्लान करते थे इसकी चोरी करो, इसको चुरा करके जमुना में फेंको या जला दो, खत्म करो, इसके आगे तो हमें पूछते ही नहीं, हमारी कभी याद नहीं करते। उठवा से लगली तो हरे मोहनी मुरलिया है, मुरलिया है बनल बासवतिया, भोजपुरी में गीत गाते हैं, कृष्ण तुम्हारे ओठों से बांसुरी सती रहती है, ये बांसुरी हमारी शौक हो गई। ऐसी इच्छा करते कभी हाथ लग जाए तो इसको सील पर लोहा से कुछ करते और जमुना में फेंकते, जितना बांस है बांस के कोट में मूल में आग लगा दो, क्या बांसुरी बजने न पाए, ये प्लान करते। तो यहाँ पर है गोपों के सौभाग्य को व्यक्त कर रहे हैं, धन्य है भाग्य गोपों का जिन्हें आंखों का फल मिल रहा है, जिन्हें अपने पग इंद्रियों का फल मिल रहा है, जो श्री कृष्ण को आलिंगन में लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके साथ खाते हैं। अतः गोपा एवं धन्य वयंतु नितरम अधन्य, हम तो अधन्य हैं, हमारे जैसा कुत्सित जीवन किसी का नहीं है, बिल्कुल कंडम जीवन हमारा है, असली जीवन गोपों का है। एक बात तो मैं कथा में कह दिया था कि लोग क्यों गोपी बनना चाहते हैं, गोपियां तो गोप बनना चाहती हैं गोपी जन चाहती हैं कि हमारा जन्म गोप बालक के रूप में हो जाए, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि हम गोपी हो जाए, तो गोपी होकर के तो रोना पड़ेगा, इसी तरह श्री कृष्ण का संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। मैं विनोद में इस बात को कह रहा था, वास्तव में गोपी बनना, गोपी बनने की लालसा जिसके हृदय में हो वो तो व्यक्ति बहुत महान है, निसंदेह, इसमें संदेह नहीं। जैसा पहले भी मैं कहा कि गोपी जन ही कृष्ण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग बिना मतलब के गोपी 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 भाव करते रहते हैं, राधा नीला राधा नीला करते रहते हैं, तो उनके लिए मैं कहा था कि गोपियां तो पछता रही हैं गोपी बनकर तो अब दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पछताना चाहते हैं, अभी तो श्री कृष्ण से मिलने में कोई संकोच नहीं, घूमने में संकोच नहीं, खेलने में, गोपी बन जाएंगे तो बस सब जगह पाबंदी लग जाएगी, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा समाज का। तो खुल करके कृष्ण से मिलने का सौभाग्य गोप सखाओं को है। और चूंकि परकिया भाव है ब्रज में, इसलिए गोपियां मिलना क्या कृष्ण को देख नहीं सकती, जैसे दूसरे जीव कृष्ण को देखते थे ऐसे गोपियां नहीं देख सकती थी। ये देखना चालू करती थी तो दूसरे लोग देखते थे कि किधर देख रही है। दूसरे जो अपने घर के लोग थे, बड़े बड़े लोग, हमेशा डांट डपट रखा करते थे। तो कभी कभी तो कहते थे कृष्ण जब वन से आने तो इसको किवाड़ में बंद कर दो, ये न जाएंगे। एक कवि ने लिखा है बंगला में, मनमत तो है कि कहावत अनेक, कवि का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन कहता है भक्त कवि का लिखा हुआ कि राधा रानी कहती हूँ कि अरे मनमत, अरे कामदेव, मैं क्या तुमको कहूँ, विधि अपराध पराण परिपीरसी तू कौन विवेक, नेत्र ने अपराध किया और तुम प्राण को दुख दे रहे हो। अरे कृष्ण को देखा तो आंखों ने देखा है कि नहीं, मतलब कृष्ण को जब ही राधा रानी ने देखा तो हृदय में लालसा हो गई उनसे मिलने की, उनके साथ रहने की, तो प्राण में दुख हो रहा है, तो कामदेव दुख दे रहा है। तो कहती हैं कि दिथि अपराध प्राण परिपीरसी ये तुम्हारा कौन विवेक, ये तुम्हारा कैसा विवेक, जो अपराध किया है उसको दंड दो, आंखों ने अपराध किया तो कलेजा में दुख क्यों दे रहे, प्राण को क्यों दंड दे रहे, और वो भी आंखों ने अपराध क्या किया, आंख ने कुछ भी अपराध नहीं किया। कहती हैं कि ब्रज ब्रज बाहिर पथ करत गतागत को नहीं हेरत का, तोहर कुसुम सर कतम संचर हमारे हृदय पंचबार। कृष्ण को वन से ब्रज में प्रवेश करते हुए और ब्रज से वन में जाते हुए कौन नहीं देखता है, किसी पर रोक नहीं है और सबको देखने की छूट है, केवल हम लोगों को, हम लोगों पर रिस्ट्रिक्शन है, हम लोगों पर निषेध है, क्यों नहीं देख सकती। तो हमने तो देखा भी नहीं, कितना देखे कृष्ण को मैं, राधा रानी कह रहे हैं कि दाहिन नयन पिसुनगन वारल और परिजन बाम ही आग, मैं दाहिने नेत्र को लगाई थी निंदकों के तरफ की, वे न देखने के कृष्ण को देख रहे। दाहिनी आंख तो मैं हमेशा निंदकों की ओर लगाई थी, वो देखें कि हमारी तरफ देख रहे, कृष्ण की तरफ नहीं देख रहे। दाहिन नयन पिसुन गन वार और बाम ही परिजन आध, और बाएं नेत्र के आधे भाग को मैं लगाई थी अपने घर के लोगों के तरफ, अपने ससुर या और जो पति आते हैं जो भी, कि वे न देखें कि कृष्ण को देख रहे हैं। तो आध नयन कोने हरि अवलोकन पतन है परमा, मैं केवल आधे नेत्र से, वो भी कोने से, केवल एक सेकंड के लिए कृष्ण को देखी, यही बहुत अपराध हो गया। तुम और किसी को नहीं मारते हो, हमको इतना दुख दे रहे हो। और दुख भी देना है तो आंख को दुख दो, प्राण को क्यों दुख दे रहे हो, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। इतना दिक्कत थी कृष्ण को देखने में वहां। इसी भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान अपने परिकरों के साथ गोलोक से आए थे, इसको परकिया भाव कहते हैं। जब प्रिया प्रियतन को मिलने में बाधा उत्पन्न होती है तो प्रेम और बढ़ता है और लालसा उत्पन्न होती है। और स्वकीय भाव में क्या होता है कि स्त्री पुरुष रोज साथ में रहते हैं, इसलिए उत्कंठा उनमें नहीं रहती है मिलने की, बात करने है ना, कि उनको ही अगर रोक दिया जाए तो उत्कंठा और ज्यादा बढ़ जाएगी। तब तो फोन पर फोन करते रहेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, कैसे हो कैसे हो करते रहेंगे, लेकिन यदि मिलने में बाधा नहीं है तो उत्कंठा भी शांत रहती है। तो उत्कंठा जितनी अधिक होती है उतना ही रस का आस्वादन होता है। तो इस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान वहां से आए, वहां पर किया भाव नहीं है गोलोक वृंदावन में, वह केवल यहाँ है। गोलोक में दो लीला भगवान नहीं कर सकते, एक जन्म लेने की और एक परकिया भाव की, वहां जन्म नहीं ले सकते। तो यहाँ जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, वात्सल्य रस का आस्वादन कराते हैं। वहां वे यशोदा जी के बच्चा है लेकिन नित्य बच्चा है, जन्म की लीला नहीं होती। और परकिया भाव अति रसे उल्लास ब्रज बिन अंधर अन्यत्र नहीं वास, प्रतिया भाव में बहुत रस है, बहुत उल्लास है। अपनी नित्य प्रियाओं को भी श्री कृष्ण ने ऐसे जगह जन्म दिया कि वे सोचती हैं कृष्ण हमारे परपति हैं, उपपति हैं। और कृष्ण ने भी ब्रज में विवाह किए नहीं है, उनको भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी की तरफ देख नहीं सकते हैं, किसी ज्योति स्त्री की तरफ देख नहीं सकते हैं, ज्योति स्त्री उनके तरफ नहीं देख सकते। लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं या सपना में देखते हैं या अच्छी तरह देखते हैं, पनघट पर देखते हैं, तो दोनों में राग उत्पन्न होता है, जिसको पूर्व राग कहते हैं। और दोनों दोनों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाधा है समाज। यहाँ तक उन सखियों का विवाह भी दूसरे के घर में हो जाता है, और फिर भी प्रेम कृष्ण से है। जब ये मिलना चाहते हैं, कृष्ण मिलना चाहते हैं, और मिलने में बहुत बाधा है, सारा समाज विरोधी है। वो विरोधी समाज भी श्री कृष्ण की ही रचना है। राधा रानी के जो पति हैं अभिमन्यु, तो कृष्ण ही उस रूप में बने हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन फिर भी रोक लगा लगा करके और उत्कंठा वर्धन होता है और इससे मिलन होता है। तो अतिशय उत्कंठा और विरह के बाद जब मिलन होता है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। अच्छा, मिलन में भी जल्दी जल्दी होता है, कुछ पूछना, कुछ सोचना, ये पूछना, वो पूछना, यहाँ मिलना, तब तक समय बीत रहा, जल्दी जल्दी भागो भागो भागो। तो राधा रानी तो कहती हैं कि जब मैं श्री कृष्ण से मिलती हूँ तो विच्छेद का भय बना रहता है कि संग छूट जाएगा, इसलिए वो अभी आस्वादन नहीं कर पाती। मिलने पर भी हमेशा भय यही रहता है कि संग छूट जाएगा, और संग छूटा है तब तो दुख है ही। तो हमारे लिए कृष्ण का संजोग या वियोग दोनों एक ही बराबर, एक ही समान, हमारे लिए कोई सुख नहीं। हमारे भाग्य में विधाता ने सुख लिखा ही नहीं। वियोग में मरना है और संजोग होता है तो उसमें भय बना रहता है कि संग छूट जाएगा, तो उस समय भी सुख नहीं होता। ये प्रक्रिया भाव है हमारे संप्रदाय में, इसी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और लोग स्वकीय भाव मानते हैं, लेकिन गौरी संप्रदाय के वैष्णव आचार्य जन सब प्रक्रिया भाव मानते हैं। और अष्टम इसमें भागवत प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण मतलब। अगर प्रक्रिया भाव नहीं होता तो श्री कृष्ण इतनी छद्म लीला, कभी पनिहारी बनना, कभी छुड़िहारी बनना, तो कभी ये बनना, मिलने की कोशिश करना, अगर स्वकिया ही राधा रानी होती तो इतने नाटक की क्या जरूरत है ना। तो ये है प्रक्रिया भाव, दिव्य रस। तो गोपियों को श्री कृष्ण पर देखना भी मना है, इसीलिए गोप सखाओं के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, कितना सौभाग्यशाली है कृष्ण, उनकी गोष्ठी में रंगे नटोरो जथा अलम बीरेजतु, जैसे कोई नटवर श्रेष्ठ नट अन्य लोगों की सभा में गाय नाचे, उस तरह पशुपाल गोष्ठी में, गोपों की गोष्ठी में श्री कृष्ण नाचते हैं, गाते हैं, उनको छूते हैं, झूला झूलते हैं इत्यादि। सारी सखी भाग्य है गोप सखाओं का, हमारा तो अभाग्य है। अब राधा रानी का उद्गार दिया जा रहा है। राधा रानी बोलती है, गोप्य किमाचरदय कुशल स्मेणु दामोदराधर सुधामति गोपिका नाम भुंते स्वयं जद वशिष्ठ रसम हृदय कहती है, अहो बताश्रु तरम गोपा नाम भाग्य। अरे सखी, गोपों के भाग्य की क्या प्रशंसा कर रही हो, तो कृष्ण के सखा रात दिन उनके साथ रहते हैं। वेणु के भाग्य को देखो, वेणु के भाग्य को, एक जड़ बांस के टुकड़े का भाग्य देखो। गोपों का भाग्य क्या वर्णन कर रहे, भाग्य देखो वेणु का, वेणु अपनी भाग्यम किम वक्तव्यम इति महाभाव स्फुर उन्मादतया मिथ्या कल्पना पूर्वक शेष्य अभिलाषा नाम। तो राधा रानी के अंदर महाभाव है, महाभाव का अर्थ है महाप्रेम कृष्ण के प्रति, तो उसके कारण है उन्माद है, और इसीलिए एक जड़ पदार्थ में वेणु में एक स्त्री की कल्पना करके या पुरुष की कल्पना करके मिथ्या कल्पना पूर्वक ईर्ष्या के साथ अपनी अभिलाषा व्यक्त कर, उनके बांसुरी से डाह हो रही है, वेणु से डाह हो रहा है। तो जड़ पदार्थ से कोई क्या डाह करेगा, लेकिन महाभाव में सोच रहे हैं कि ये कृष्ण के अधर को पी रहा है, ये चूम रहा है उनके ओठों को। तो ईर्ष्या पूर्वक बोलती है, कहती हे गोप्या, हे गोपियों, क्या गोपी का जन्म लेकर के होगा? सौभाग्य गोपी जन्म का नहीं है, सौभाग्य है वेणु जन्म का। तो वेणु सौभाग्यशाली है, तो वेणु किम कुशलम आचरत। पता नहीं इस वेणु ने, बांसुरी ने कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था, कौन सुकृत किया था। और सखी इसका पता लगाओ, जो तप और जो सुकृत वेणु ने किया था हम भी वही करेंगे, हम वही करेंगे जिससे मुझे भी श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श मिले और उनकी अधर सुधा मिले। पता नहीं इसने क्या तप किया था। स्मजत गोपिकानम अपि दामोदर राधर दामोदराधर सुधाम स्वयं और सिस्टम रसम भूखते। यह वेणु दामोदर अधर सुधाम स्वयं भूखते, यह वेणु श्री कृष्ण के अधर सुधा को भोग रहा है, पी रहा है। वेणु का पुलिंग में वेणु हमेशा कहा जाएगा, यह पुरुष जाति का है, बांस का पुत्र है और यह कृष्ण के दामोदर के अधर सुधा को पी रहा है। वो अधर सुधा किसकी वस्तु है? गोपिका नाम, जो हम लोगों का धन है। हम लोग स्त्री हैं तो स्त्री को अधिकार है पुरुष के अधर को पीने का, या पुरुष को अधिकार है स्त्री के अधर को पीने का। तो यह पुरुष होकर भी श्री कृष्ण के अधर सुधा को पी रहा जो हम लोगों का धन है। अस्माकम एव भोग्यं सखी, हमारा धन है, हमें भोगने को नहीं मिल रहा है। और यह बांस का बेटा उनके ओठों पर रात दिन रह करके हमारा धन लूट रहा है और स्वयं पूछता भी नहीं है, कभी हमसे परमिशन नहीं लिया। स्वयं का अर्थ ये है कभी पूछा नहीं कि हम पिए या नहीं पिए, बल्कि उल्टा गरजता है। गरजता है जब इधर से लोग गाली देती हैं वेणु को, तो भगवान कृष्ण वेणु में कुछ बोलते हैं तो लगता है जैसे बांसुरी झगड़ा कर रही है, वेणु झगड़ा कर रहा है गोपिकाओं से। ये लोग जब गाली देते हैं देती हैं वेणु को, तो वेणु कभी कभी बोलता है, मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या समझती हो, बिना तप के ही मैं कृष्ण के अधर सुधा को पी रही हूँ। तो खड़ा रहकर मैंने तप किया है, बांस खड़ा रहता है ना, तो श्री कृष्ण बोलते हैं इस तरह से वेणु की तरफ से, मैं खड़ा रहकर के तप किया, घाम सहा, वर्षा सहा, आंधी सहा, कितना कितना तप किया, और इसके बाद कुल्हाड़ी से काटा गया, काट करके करेजा में छेद किया गया है, साथ साथ छेद है, लोहा से छेद करते हैं, लाल लाल लोहा से, आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, बांस में छेद किया जाता है, जो सात छेद होते हैं और मुख पर छेद लाल।